الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وقال الله تعالى في مقام اخر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او كم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنت کنزم مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فأحببت ان اعرف اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں مجھے اس بات کو پسند میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق تو پھر میں نے اس دنیا کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بندوں کو پیدا کرنے کی وجہ یہ کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے اللہ تعالیٰ کو کی محبت حاصل کرے کیونکہ یہ محبت وجہ بنی اس مخلوق کی تخلیق کی اس لیے اس محبت کو مشائخ نے تعین اول کہا یہ جب محبت وجہ بن گئی اس مخلوق کے پیدا کرنے کے لیے تو اب یہ محبت پوری مخلوق میں تقسیم کی گئی ہر چیز کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق محبت ملی زی روح کو بھی محبت ملی اور غیر زی روح کو بھی محبت ملی انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی جانوروں میں بھی ڈال دی چرند میں بھی ڈال دی پرند میں بھی ڈال دی حتیٰ کہ بے جان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز زمین کی طرف کھنچتی ہے کوئی چیز اوپر اگر رکھتے ہیں تو وہ ہوا میں نہیں رہے گی زمین کی طرف آ جائے گی یہ چیزوں کی آپس میں محبت ہے زمین سے محبت ہے مقناطیس جو ہے لوہے کو کھینچتا ہے یہ مقناطیس اور لوہے کی محبت ہے اسی طرح انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے جو ہمدردی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے روح والی چیزوں کے اندر محبت جو ڈال دی ہے اس کی مثال ہے تکلیف کسی کو ہوتی ہے اس کا احساس جو دوسرا بندہ کرتا ہے یہ اس محبت کی وجہ سے کرتا ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہوتی اسی لیے یہ ہمدردی نہ ہوتی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی یہ جو ہمدردی ایک دوسرے کے لیے انسان کے اندر آ گئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈال دی ہے اس دنیا پر محبت کا راج ہے ہر چیز کے اندر محبت ڈلی چنانچہ اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے کئی مرتبہ یہ تجربہ ہوا کہ والد بیمار ہوتا ہے بیٹی خدمت کر رہی ہوتی ہے باپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو رات بھر انتظار کرتی ہے کہ والد جاگیں گے تو دوائی پیش کروں گی پوری رات ان کی خدمت کرتی ہے تکلیف برداشت کرتی ہے اس کو اپنا فرض منصب ہی سمجھتی ہے وقت ملتا ہے تو دعائیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو صحت یابی دے دے کسی نیک اللہ والے کو خط کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے پیغامات بھجواتی ہے کہ اللہ میرے والد کو صحیح کر دے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ اکیلے بیٹھ کر یہ بھی دعائیں کر لیتی ہے کہ اللہ مجھے یہ بیماری دے دے اور میرے والد سے یہ بیماری لے دے. تو یہ جو اولاد کے دل میں جو محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اپنے والدین کے لیے رکھی. اسی طرح والدین کے دل میں اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، اور اس کا منظر کئی مرتبہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب والدین اپنی بچی کو، نوجوان بچی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد، نکاح کے بعد اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ والد جو ہے اپنی کمائی کا بیشتر حصہ لگا چکا ہوتا ہے اس بچی کو دینے کے لیے، اس کے سر کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جس وقت بچی گھر سے جا رہی ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اس نے دوسرے گھر جانا ہے، اس کو میں نے تو نازوں سے محبت سے پالا، یہ دوسرے گھر میں جائے گی تو یہ کس طرح رہے گی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس چیز کے بارے میں کڑھن رہتی ہے اور وہ اس چیز سے روتے ہیں. کئی مرتبہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ والد اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس طرح رو رہا ہوتا ہے کہ شاید اپنے کسی قریبی کے انتقال پہ اتنا نہیں روتا ہوگا جتنا اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو رونا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے دل میں محبت ڈال دی ہے. یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے مخلوق میں تقسیم کر دی ہے. اسی طرح بھائی اور بہن کے اندر محبت ہوتی ہے. بہن اس ملک سے پردیس چلے جائے، خاوند اور بچوں کے ساتھ خوشیوں والی زندگی گزار رہی ہو، گھر سے تعلق کم، رابطہ کم، الگ ملک میں ہو، پھر بھی اگر اسے خبر مل جائے کہ بھائی کی طبیعت خراب ہے، بھائی کو ہسپتال لے جایا گیا ہے، تو اب ساری خوشیاں ایک طرف، ایک ہی فکر لگ جاتی ہے کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے، میرے بھائی کی کیسی صحت ہے، بار بار فون کر کے خبر پوچھ رہی ہیں کہ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، ہر وقت اسی چیز کی فکر ہے. مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، نفلیں پڑھتی ہے، یہی دعائیں مانگتی ہے کہ میرے بھائی کی کسی طرح صحت یابی ہو جائے. یہ جو ساری فکر ایک اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے، یہ اسی لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ دل کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی ہے. اس محبت کی وجہ سے یہ فکر پیدا ہو رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ بچوں کو جب اپنے بھائی کو مخاطب کرنے کے لیے کہتی ہے تو کہتی ہے کہ اس ماموں کو چندا ماموں کہو، کیونکہ یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اپنا بھائی جیسا بھی ہو، دل میں وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں میں یہ محبت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ کھنچتے ہیں ایک دوسرے کی طرف. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی ہے. تکلیف ایک کو ہوتی ہے اور دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے، یہ میاں بیوی کا حال ہوتا. بس نہیں چلتا کہ کوئی دوا ہو ایسی کہ اگر بیوی بیمار ہے تو وہ دوا ایسی مل جائے کہ وہ فوراً صحت مند ہو جائے. اگر اس کو پریشانی ہے تو خاوند سمجھتا ہے کہ یہ میری پریشانی ہے، اور اگر خاوند کو پریشانی ہے تو بیوی سمجھتی ہے کہ یہ میری پریشانی ہے. خاوند کا غم بیوی کا غم، اور خاوند کی خوشی جو ہے وہ بیوی کی خوشی ہوتی ہے. حتیٰ کہ خاوند یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری بیوی پریشان ہے، خوش نہیں ہے، تو اسے خود کو پریشانی لگ جاتی ہے. اور بیوی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر میں کیوں ہی شہزادیوں والی زندگی گزاری ہو، کتنی ہی کھلی زندگی گزاری ہو، اگر خاوند کے ساتھ محبت ہے تو اس کے گھر میں آ کے غربت بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ برداشت کر لیتی ہے، کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے، اپنے والد کو بھی نہیں بتاتی ہے، بھائیوں کو بھی نہیں بتاتی ہے، کہ دل میں ایسی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری غربت اور وہ تکالیف برداشت کر لیتی ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ محبت ہے जो अल्लाह ताला ने दिलों में डाल दी है। वालिद को अपने औलाद से ऐसी मोहब्बत होती है कि कई मर्तबा 24 घंटे में 16 16 18 18 घंटे नौकरी कर रहा होता है, दो दो नौकरियां कर रहा होता है। उसकी जरूरत तो एक नौकरी से भी पूरी हो जाती है, खाना पीना तो एक से भी मिल जाता है, मगर उसके सामने बच्चों की जरूरियात होती हैं, बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, जिसकी वजह से वो इस तकलीफ को भी बर्दाश्त कर लेता है, इस सहूबत को भी बर्दाश्त कर लेता है। उसका दिल ये चाहता है कि बस किसी न किसी तरह मैं अपने बीवी बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर लूं। ये इंसान के दिल में मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला ने रख दी होती है। मगर इन तमाम मोहब्बतों में माँ की जो मोहब्बत बच्चों के लिए होती है वो जरबुल मिसल है, उसकी मिसाल मिल नहीं सकती। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। माँ की मोहब्बत वो हिमालय पहाड़ है कि जिसकी चोटी को कोई छू नहीं सकता। माँ की मोहब्बत ये ऐसी मोहब्बत है कि जिसका अंदाजा कोई और लगा ही नहीं सकता। ये वो सदाबहार फूल है कि जिसे कभी भी खिजा नहीं आती। इसीलिए माँ हर हाल में, हर वक्त में बच्चों पर कुर्बान हुई जा रही होती है, माँ अपने बच्चे पर कुर्बान। और ये हाल सिर्फ इंसानों का नहीं कि माँ बच्चे पर कुर्बान, जानवरों में भी यही हाल है कि माँ जो है वो बच्चे पर कुर्बान होती है। एक छोटी सी जानवर है चिड़िया, उसको भी अगर आप देखें तो वो अपनी चोंच में पानी लेती है और फिर सफर कर करके अपने घोंसले में छोटे बच्चों के पास आती है, और चोंच में जो थोड़ा सा पानी के एक दो कतरे होते हैं वो अपनी छोटे से बच्चे के मुंह में डाल देती है। इतने पसीने में, इतनी प्यास में, इतनी गर्मी में चाहती तो खुद वो पानी अपने मुंह में डाल लेती, मगर नहीं, अपने में मुंह में पानी लेके आती है इस चीज को सोचते हुए कि मेरी छोटे जो बच्चे हैं वो प्यासे हैं, और उनको अपने मुंह से पानी पिलाती है। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने माँ के दिल में रखी है। एक सहाबी थे, नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले जाने वाले थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें चिड़िया के छोटे बच्चे मौजूद हैं। इनको ये बच्चे बड़े अच्छे लगे, इन्होंने बच्चे हाथ में पकड़ लिए और बच्चों के साथ खेलने लगे, चिड़िया के बच्चों के साथ। थोड़ी देर में चिड़िया आ गई अपने बच्चों को देखने के लिए। पहले तो घोंसले में जाती है, उसे बच्चे नहीं मिलते। फिर वो देख लेती है कि इन सहाबी के पास ये बच्चे हैं, तो वो आवाजें लगाना शुरू कर देती है, चहचहाना शुरू कर देती है और इन सहाबी के गिर्द घूमना शुरू कर देती है। काफी देर तक वो ऐसा करती है। वो सहाबी जो थे वो चिड़िया के बच्चों के साथ खेलते रहे, हत्ता कि वो बहुत ही परेशान होती है, बहुत आवाजें देती है, ये बच्चों को छोड़ते नहीं, हत्ता कि चिड़िया जो है वो आकर इन सहाबी के कंधे पर बैठ गई। इन्होंने चिड़िया को भी पकड़ लिया। अब चिड़िया और चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अलैहिस्सलाम को पूरा वाकया सुनाया कि अल्लाह के नबी, ये बच्चे बड़े प्यारे थे, मैंने उठा लिए। अब उसकी माँ भी घूम रही थी और मेरे पास करीब आ गई, तो मैंने उसकी माँ को भी उठा लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखिए, आपने इस मामले को समझा नहीं, असल में ये माँ परेशान हो रही थी कि मेरे बच्चे आपने ले लिए हैं, मेरे बच्चे मुझे दे दो, इसीलिए वो आपके गिर चक्कर लगा रही थी, आपको आवाजें दे रही थी, आप इस बात को समझ ना सके। वो थक गई, टूट गई, हार गई। उसने कहा कि ठीक है, अगर मेरे बच्चे तुम मुझे नहीं देते तो मुझे भी कैद कर लो। चुनाचे वो आपके कंधे पर आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी कैद में तो आ जाऊंगी मगर अपने बच्चों से दूर नहीं होगी। तो ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने जानवरों में भी रख दी। ऐसी छोटी सी नन्ही सी जान जो कि चिड़िया है, उसके दिल में भी अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत रख दी। माँ की मोहब्बत जो है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसी तरह मुर्गी को देखा होगा, कई मर्तबा मुर्गी के बच्चे को बिल्ली खाने आती है, बिल्ली सामने आ जाती है, बच्चों के ऊपर अटैक करने वाली होती है, और मुर्गी देख भी रही होती है कि मेरे बच्चों को ये अब खा भी सकती है। मुर्गी अपने बच्चों के सामने आ जाती है, बिल्ली के सामने आ जाती है कि पहले मुझ पे वार होगा फिर बच्चों पे होगा। वो मुर्गी जानती भी है कि मैं इस बिल्ली से नहीं लड़ सकती, ये मुझे भी खा जाएगी मेरे बच्चों को भी खा जाएगी, मगर उसने ये सोचा होता है कि अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देखने से अच्छा है कि पहले मैं मर जाऊं फिर बेशक मेरे बच्चे मर जाएं। तो अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत माँ को दी है जो समझ में ना आने वाली, ये वो मामता है जो अल्लाह ताला ने वदियत की है इंसान के दिल में। इसका कोई कीमत नहीं हो सकती, इसका कोई मोल नहीं है, ये अल्लाह की दीवी चीज है, ये माँ के दिल में होती है। देखिए, औरत के दिल में जो बच्चे की मोहब्बत होती है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जवान बच्चियां इसका अंदाजा लगा ही नहीं सकती जब तक कि वो खुद इस मरहले से ना गुजरे, जब तक कि वो खुद माएं ना बन जाएं। ये अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत होती है, ये ऐसी मोहब्बत होती है जो अल्लाह ने डाली होती है, इसलिए डाली होती है कि माँ ने बच्चे की परवरिश करनी। ये मोहब्बत ना हो तो बच्चे की वो परवरिश हो ही नहीं सकती। चुनांचे अल्लाह ताला ने ये चीज दिल में डाल दी होती है, हत्ता कि ये मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि कई मर्तबा किसी बच्ची की शादी को अगर चंद साल हो जाए और औलाद नहीं हो रही हो तो वो औलाद के लिए गमजदा हो जाती है, परेशान हो जाती है, मुसल्ले पे बैठ जाती है, रो रो कर दुआएं करती है। कोई उसको आके कहता भी है कि तेरी इतनी अच्छी जिंदगी है, तुझे अल्लाह ताला ने हुस्नो जमाल भी दिया, अल्लाह ताला ने तालीम भी दी, अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने वाला खाविन भी दिया, अल्लाह ताला ने माल और दौलत के अंबार भी लगा दिए, तो अब क्यों तू गमजदा है? तो वो आगे से कहती है कि एक नेमत है जो मुझे अभी नहीं मिली, और वो नेमत औलाद की नेमत है। ऐसी ये नेमत है कि औरत को हर चीज मिल जाए फिर भी उसका दिल इस नेमत की तरफ ज्यादा खिंचता है। चुनाचे हज पे जाती है तो भी यही दुआएं करती है कि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। तवाफ कर रही होती है, तवाफ के अंदर भी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ यही दुआएं हो रही होती हैं। हत्ता के मकाम इब्राहिम पे जो कि कुबूलियत की जगह है, वहां बैठकर भी यही दुआएं हो रही होती हैं, कहीं तहज्जुद में बैठे हुए यही दुआएं हो रही होती हैं, खिलाफ काबा पकड़ कर भी यही दुआएं हो रही होती हैं। दिल के अंदर अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत डाल दी होती है कि जिसकी वजह से दिल बार बार किसी नेमत को मांग रहा होता है। हत्ता कि अगर किसी बुजुर्ग के पास जाना हुआ तो उसको भी इसी दुआ के लिए बार बार कहना कि मेरे गोद में अल्लाह ताला एक नन्ही सी जान दे दे। चुनाचे औरत के दिल में जो मोहब्बत बच्चे के लिए होती है उसका शुमार करना, उसका समझना भी आम इंसान के जहन से बाहर होता है। हत्ता कि औरत ये समझती है कि मैं जिस नेमत को अल्लाह से मांग रही हूँ इस नेमत के मांगने में तकालीफ है, कि अगर ये नेमत मुझे मिलती है तो उससे पहले मुझे 9 महीने बीमारी की हालत में गुजारने होंगे, कोई मेरा वक्त ऐसा नहीं जो मैं सही हालत को समझ सकूं कि ये सही हालत है, ये सेहत वाली हालत है, हर वक्त बीमारी वाला मामला रहेगा, कभी उल्टियां आएंगी तो कभी खाना हजम सही नहीं होगा, कभी भूख नहीं लगेगी, कभी खाने को दिल नहीं करेगा, ऐसी परेशानी रहेगी, और फिर इससे बढ़कर कि जिस वक्त डिलीवरी का वक्त होता है, बच्चे के पैदा होने का वक्त होता है, ये वो तकलीफ है कि ऐसी तकलीफ इंसान को फिर कभी नहीं आती। औरत ये सब कुछ जानते हुए भी उसके दिल में बच्चे की इतनी मोहब्बत होती है कि वो इन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होती है, मगर अपनी औलाद से दूर होने के लिए तैयार नहीं होती। उसको ये भी पता होता है कि औरत जब बच्चा जन्म रही होती है तो उसकी लाइफ और डेथ का मामला होता है, मौत भी वाकई हो सकती है, मगर उसे ये भी कबूल होता है कि बस एक मर्तबा मुझे मेरा बच्चा मिल जाए फिर मुझे हर चीज कबूल है। इसलिए इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी होती है। बच्चा पैदा होता है, पूरा दिन माँ उसकी खिदमत करती रहती है, थक जाती है, थकावट से नींद गालिब होती है, आकर बिस्तर पे लौट लेटती है और बच्चा अगर रोना शुरू कर दे तो वो बच्चे को लेके गोद में बैठ जाती है। अगर बच्चे को ये तकलीफ हो रही है कि वो सो नहीं पा रहा और हिलना जुलना नहीं चाहिए उसे, तो माँ एक तरफ बिल्कुल खामोशी से बैठ जाती है, न हिलती है न जुलती है। पानी पीना चाहे तो पानी भी नहीं पीती कि मेरा बच्चा उठ ना जाए, उसकी नींद खराब ना हो जाए। और अगर बच्चा ये पसंद करे कि मैं गोद ही में सोऊंगा तो वो रात भर खुद जागना पसंद कर लेगी, बच्चे की नींद खराब करने को पसंद नहीं करेगी। ये वो माँ होती है जो बच्चे के लिए दीवाना वार, बच्चे के लिए दीवानी हो जाती है। बच्चे की पैदाइश के साथ ही उस माँ की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ जाती है, अपने आप को भूल जाती है, बस बच्चे की फिक्र लग जाती है, उसके खिलाने की फिक्र होती है, इसको पिलाने की फिक्र होती है, उसको सुलाने की फिक्र होती है, हत्ता के उसकी सोचों में भी बच्चे की ही फिक्र आ रही होती है। कोई बात सोचने जाएगी तो उसका एंगल बच्चे ही की तरफ निकलेगा, हत्ता के बच्चा अगर खुश होगा तो माँ खुश नजर आएगी और बच्चा अगर खुश नहीं होगा तो माँ भी गमजदा नजर आएगी। हत्ता के बच्चे को अगर तकलीफ है, कान में कभी तकलीफ हो जाती है, पेट में तकलीफ हो जाती है, तो माँ जो है वो आंसू बहा रही होती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ है। ये इस मोहब्बत की वजह से जो अल्लाह ने दिल में डाल दी होती है। हत्ता के अगर औरत के करीबी रिश्तेदारों में से कोई इस तरह का इजहार करे कि जैसे उसे बच्चे से मोहब्बत नहीं, तो अपने उस करीबी रिश्तेदार को गैर समझने लगती है कि जिसको मेरे बच्चे से मोहब्बत नहीं वो मेरा नहीं है। और अगर कोई गैर होगा और उसके बच्चे से मोहब्बत कर रहा होगा तो उसको अपना करीबी समझने लगेगी कि अब उसका करीब और दूर का जो जहन है वो इस तरह बनेगा कि जो मेरे बच्चे से मोहब्बत करता है वो मेरा करीबी और जो नहीं करता वो मेरा गैर हो गया है। तो माँ की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। हत्ता के जब बच्चा उसकी गोद में आ जाता है वो समझती है कि दुनिया की सारी खुशियां मेरी गोद में आ गई। पहले बच्चे को खुद खिलाती है फिर खुद खाती है, पहले बच्चे को पिलाती है खुद पीती है, पहले बच्चे को सुलाती है इसके बाद खुद सोती है, खुद रात भर जागना गवारा कर लेती है मगर बच्चे की नींद खराब होना ये गवारा नहीं करती। ये माँ के दिल की मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाल दी होती है। बच्चा जवान हो जाता है, बाहर काम से जाता है, कभी लेट वापस आता है, घर वापस वक्त पे नहीं आता, घर के सारे लोग खाना खा लेंगे, ये बैठी होगी इंतजार कर रही होगी कि कब मेरा बच्चा वापस आएगा, मैं उसके साथ बैठ के खाऊंगी। हत्ता के बेटी कहती है कि अम्मी खा लीजिए, कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बस दिल में इंतजार उस बेटे का लगा हुआ होता है। शौहर भी कहता है कि भाई खा लो, कहती नहीं मैं बाद में खा लूंगी। दिल में यही होता है कि पता नहीं मेरे बेटे ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, सुबह से गया हुआ है अभी तक वापस नहीं आया, हत्ता के खाए बगैर बिस्तर पर चली जाएगी और करवटे ले रही होगी, नजर दरवाजे पे रखी होगी, फोन पर रखी होगी कि बस किसी तरह मुझे कुछ खबर मिल जाए कि वो ठीक है, वो हिफाजत में है। परेशान हो जाएगी तो खड़ी होके मुसल्ले पे बैठ जाएगी, दुआएं करने लगेगी कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह मेरे बच्चे की तू हिफाजत फरमा। कि माँ के दिल की मोहब्बत होती है कि बच्चा जब तक घर वापस ना लौटे उसे घर की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई मोहब्बत होती है जिसका इंसान इहाता ही नहीं कर सकता। सच्ची बात ये है कि अच्छे लोगों से तो सब मोहब्बत करते हैं, माँ वो चीज होती है जो बुरी औलाद से भी मोहब्बत करती है। माँ वो होती है जो बुरी औलाद से भी मोहब्बत करती है, हत्ता के बाप कहता है कि तूने बेटे को बिगाड़ दिया, वो आगे से कहती है कि चलो बिगड़ा हुआ सही, अपने मुकद्दर का है मगर बच्चा तो मेरा है, मैं उसको मोहब्बत नहीं दूंगी तो कौन मोहब्बत देगा। तो माँ वो शख्सियत होती है जो बुरों से भी मोहब्बत कर लेती है, हत्ता के वालिद कभी कभी गुस्से में आके कह देगा कि घर से निकल जाओ, मगर माँ कभी भी ये बात नहीं करेगी। ऐसी उसके दिल में बच्चे की ममता बढ़ जाती है, ऐसी हिस्सा उसके वजूद का ये ममता बन गई होती है कि वो अपने बेटे से कभी जुदा होने का सोच ही नहीं सकती। इसीलिए कई मर्तबा वो अपने बेटे को खुद तो डांट लेगी, मगर अगर कोई और डांटेगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, हत्ता कि अगर बाप भी डांट रहा होगा तो वो बाप को डांट देगी कि आप ना डांटे, मैं जो डांट रही हूँ वो काफी है, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा कि कोई मेरे बेटे को कुछ कहे। ये उसके दिल के अंदर की मोहब्बत होती है जिसकी वजह से उसे अपने बेटे के साथ कोई चीज कोई बुराई पसंद ही नहीं आती। इसीलिए शरीयत ने माँ का बड़ा मकाम रखा है। हदीस पाक में आता है कि जिसने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट वाली निगाह डाली, मोहब्बत वाली निगाह डाली, अल्लाह ताला उसको एक मकबूल हज या उम्रे का सवाब अता करते हैं। सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर कोई शख्स बार बार अपनी वालदा पर ये मोहब्बत की निगाह डाले तो क्या उसको बार बार हज और उम्रे का सवाब मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जितनी बार अपनी वालदा पर मोहब्बत की निगाह डालेगा उतनी बार मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। हैरान रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने वालदा को क्या मकाम दिया। इसीलिए हमारे मशाइख ने फरमाया कि जिसने अपनी वालदा के कदम को बोसा दिया, जितने अपनी वालदा के पांव को बोसा दिया, गोया के उसने बैतुल्ला शरीफ की दहलीज को बोसा दिया है। तो माँ का अल्लाह ताला ने ये मकाम बना दिया। एक मर्तबा एक नौजवान था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया और आकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मेरी वालदा बूढ़ी है और मैंने अपनी वालदा को हज करवाया इस हाल में कि मेरी वालदा जो थी वो चल नहीं सकती थी, मैंने अपनी वालदा को कंधे पर बिठाया, इसी हाल में मैंने उसको मीना के सैर मैंने मीना लेके गया, मीना से इसी हाल में मैं अरफात भी लेके गया, गर्मी का वक्त था, थक जाता था मगर अपनी वालदा को मुशक्कत में नहीं डाला, उसको कंधे पे लग के ले जाता था, अरफात भी ले गया, वहां से मुजदलफा भी इसी हालत में लेके आया, हत्ता कि उसका हज मैंने इसी हालत में मुकम्मल किया कि उसको अपने कंधे पर बिठा कर मैंने हज किया। तो ऐ अल्लाह के नबी, मुझे आप बताएं कि क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर लिया? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, इस अमल से शायद तूने अपनी वालदा के उन दर्दों में से किसी एक दर्द का हक अदा कर लिया होगा जो उसको हुआ होगा जब तेरी विलादत हो रही होगी। तो सोचिए अल्लाह ताला ने वालदा को कैसा मकाम दिया है, अल्लाह ताला ने वालदा को कैसी शान दी है। इसीलिए हदीस पाक में आता है, अल जन्नतु तहता अकदाम अल उम्महात, के जन्नत तो तुम्हारी वालदाओं के पैरों के नीचे है। इसीलिए जिस इंसान ने अपनी वालदा की खिदमत कर ली, उसकी दुआएं ले ली, उसको राजी कर लिया, उसने बहुत बड़ी नेमत को हासिल कर लिया। इसीलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में दो औरतें थी, दो माएं थी, दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर निकली, रास्ते में जंगल था, जंगल में जाते जाते उन्होंने बच्चों को कहीं रखा, किसी काम से आगे पीछे हुई तो भेड़िया आ गया और भेड़िये ने आकर उन दो बच्चों में से एक बच्चे को खा लिया। अब जिस बच्चे की वो माँ थी वो आई और आकर कहने लगी कि नहीं, मेरे बच्चे को तो नहीं खाया, ये जो दूसरी औरत है ये उसका बच्चा था, मेरा बच्चा तो जिंदा है। अब उसका क्योंकि बच्चा फौत हो गया था और उसको बच्चे की बड़ी शदीद मोहब्बत थी और उसने कहा कि नहीं ये दूसरा वाला मेरा है, इस औरत के बच्चे को भेड़िए ने खा लिया है। तो उसने कहा कि नहीं मेरा बच्चा तो यही है। आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा जो है एक मुकदमा बन गया और ये मुकदमा हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के सामने पेश हुआ। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के सामने ये दोनों औरतें आई, एक ने कहा कि ये बच्चा मेरा है और एक ने दूसरी ने कहा कि नहीं ये मेरा है, इसके बच्चे को तो भेड़िया खा गया है। अब जिस औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया था उसको पता था कि मेरे बच्चे को भेड़िया खा गया है, मगर फिर भी वो कहती कि नहीं ये दूसरा मेरा है। हत्ता के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफी सोच में पड़ गए कि अब कैसे फैसला किया जाए कि किसका ये बच्चा है, और उनके जहन में अल्लाह ताला ने ये बात डाली। उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसका फैसला तो हो नहीं सकता, लाओ मेरी तलवार, मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करता हूँ, आधा एक को दे दूंगा और आधा दूसरे को दे दूंगा। तो जिस माँ का वो हकीकी बच्चा था वो माँ खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहने लगी कि नहीं सुलेमान अलैहि सलाम ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा इसी औरत का है, आप इसको दे दें, क्योंकि ये बच्चा जो है अगर इसके पास जाएगा तो ये फौत तो नहीं होगा, आप इसको काटेंगे तो नहीं, ये जिंदा रह जाएगा, मैं इसको इसी हालत में देख लिया करूंगी। तो ये इसी बात को सुनकर सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा कि देखो वाकई में ही ये बच्चा इस औरत का है जिसने कहा कि इस बच्चे को दूसरी औरत को दे दिया जाए। तो माँ के दिल में अल्लाह ताला ने इस तरह मोहब्बत डाल दी होती है, ये मोहब्बतें अल्लाह ताला ने माँ के दिल में भी डाली होती है, इंसानी माँ के दिल में भी, हैवानात में भी डाल दी होती है, चरिंद में परिंद में। ये जितनी मोहब्बतें इस दुनिया में नजर आ रही हैं, जितनी भी मोहब्बतें हैं, इन सब को अगर जमा कर लिया जाए तो भी ये सारी मोहब्बतें मिलकर उस मोहब्बत का 70वां हिस्सा भी नहीं बन सकती जो अल्लाह ताला को मोमिन बंदे के साथ होता है। इसीलिए माँ की ये आदत है कि वो खुद तो बच्चे को डांट लेगी मगर किसी और को डांटने नहीं देगी। अल्लाह ताला का भी मोमिन के साथ यही मामला है कि वो खुद तो नाराज हो जाएंगे, खुद तो बंदे से नाराज हो जाएंगे मगर किसी और को अपने मोमिन बंदे से नाराज नहीं होने देंगे। चुनाचे इसकी मशहूर मिसाल है, ग़ज़वा उहद का वक्त था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया कि आप सब इस पहाड़ पे खड़े हो जाएं और जब तक मैं आपको ना कहूं आपने नीचे नहीं उतरना। सहाबा कराम पहाड़ पर खड़े हो गए, जंग चली, हत्ता के सहाबा कराम को गलत फहमी हो गई कि मुसलमान अब जंग जीत गए हैं। चुनाचे जब उनको ये यकीन हो गया कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो वो पहाड़ से नीचे उतर आए, और अभी जंग मुकम्मल ही नहीं हुई थी, उस वक्त खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह उन्हों मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार की तरफ से लड़ रहे थे, उनको ये मौका मिला और उन्होंने पीछे से वार किया, मुसलमान बहुत सारे शहीद हो गए, हत्ता के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब चचा जो थे हजरत हमजा रजी अल्लाह उन्हों उनको भी शहादत उसी गजवा में नसीब हुई, हत्ता के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिस्म से भी खून निकला, आपके दंदान मुबारक भी शहीद हुए। तो इस सारी गजवा में जो कार्रवाई हुई और सहाबा कराम को जो गलत फहमी हुई जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे उतर आए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा कराम से शदीद नाराजगी हुई। हत्ता के जब जंग मुकम्मल हो गई, आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ वापस ले आए तो आपने खामोशी इख्तियार कर ली, सहाबा कराम से आपने गुफ्तगू ना की, कई दिन तक आपने ऐसा मामला रखा कि जैसे आप नाराज थे। अल्लाह ताला ने इस नाराजगी पर कुरान पाक में ये आयत नाजिल की सहाबा कराम के लिए कि फाफु अनहुम, आप उनको माफ कर दीजिए, वस्तगफिर लहुम, और आप भी उनके लिए इस्तगफार कीजिए, वशाविरहुम फिल अम्र, और आप अपने कामों में इनसे मशवरे भी शुरू कर दीजिए। देखिए अल्लाह ताला को सहाबा कराम से इतनी मोहब्बत थी कि गलती उनकी थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज थे, सहाबा कराम की इस नाराजगी जो नबी अलैहिस्सलाम को उनसे थी अल्लाह ताला को ये पसंद ना आई, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि नहीं आप इनको माफ करेंगे, اور آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں گے اور آپ اپنے مشوروں میں ان کو شامل بھی کریں گے. تو دیکھیے جس طرح ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی مومن بننے سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے مومن کو چاہیے کہ کوئی غلطی کر دے تو یہ وہ رب ہے جو غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ واقعہ ہے کہ آپ بھی اللہ کے بڑے ہی مقبول بندوں میں سے ہیں. تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں آپ سب سے افضل ہیں. آپ اپنے ایک کسی ساتھی کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے, ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچ ان کو دیتے, اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری تھا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقوں نے بہتان لگایا اور یہ جو صاحب تھے جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خرچہ دیا کرتے تھے ان کو بھی غلط فہمی ہو گئی اور یہ اس بہتان کو سچ سمجھنے لگے. حضرت ابو بکر کو ان پر بڑا غصہ آیا, آپ ان سے بڑے ناراض ہوئے. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے, اگر یہ اسی طرح سمجھتا ہے تو اب میں اس کا ماہانہ خرچ بند کر دیتا ہوں. چنانچہ آپ نے یہ ماہانہ خرچ بند کر دیا, مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ تم ان کو معاف کر دو اور ان کے ساتھ صفائی والا معاملہ کر دو. کیا تم نہیں چاہتے, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی گناہوں کو معاف کر دیں؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی سفارش کی اپنے ایک مومن بندے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے سامنے کہ نہیں, ان کا خرچہ تم نے بند نہیں کرنا, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں؟ چنانچہ ان آیت کے نازل ہونے کے بعد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا نہ صرف خرچہ واپس شروع کر دیا بلکہ دگنا خرچہ دینے لگے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے بندوں سے وہ بھی ماں کی محبت سے بہت بڑھ کر ہے. خود تو پسند کر لیں گے کہ میں ناراض ہو جاؤں, مگر اپنے محبوب کی بھی ناراضگی کو پسند نہیں کریں گے مومن کے لیے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی بھی ناراضگی کو مومن کے لیے نہیں پسند کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ جائیں, اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما تھے, ایک قافلہ سامنے سے گزرا. اس قافلے میں نظر آ رہا تھا کہ ایک عورت تھی جو ادھر ادھر بھاگ رہی ہے, پریشان نظر آ رہی ہے, اپنے سر کی چادر کا بھی اسے خیال نہیں ہے. ہر بندے سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟ میرا بچہ گم ہو گیا ہے. بچے گم ہونے کی اسے اتنی پرواہ تھی کہ وہ کسی چیز کا خیال نہیں کر رہی تھی, کبھی رو رہی تھی, کبھی آنسو نکل رہے تھے, کبھی بھاگ رہی تھی. کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے, اسے خود کو بھی اپنے حال کا سمجھ نہیں آ رہا تھا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ اس عورت کو اپنا بچہ جب مل جائے گا تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسا تو ہرگز ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے اس بچے کے جس کے لیے یہ ایسی پاگل ہو رہی ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی. نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ دیکھو جس طرح اس کو نہیں پسند کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یہ اپنے مومن بندے کو آگ میں ڈال دے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شفقت سے, اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں, اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. ایک صحابی تھے, ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی. والدہ کافی عرصے تک ناراض تھی, انہوں نے والدہ کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کیا تھا. اب وہ چاہتے تھے کہ والدہ مان جائیں, بہت ان سے کہتے کہ مان جائیں, معاف کر دیں, وہ نہیں مانتی. حتیٰ کہ ان کی والدہ کا آخری وقت آ گیا, موت کا وقت بالکل قریب ہو گیا. وہ اپنی والدہ سے بہت ہی کہنے لگے کہ امی معاف کر دیں, والدہ بات نہیں مانتی. حتیٰ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی, میری والدہ مجھ سے ناراض ہے, اب ان کے جانے کا وقت قریب ہے, ڈرتا ہوں کہ اگر اس ناراضگی کی حالت میں چلی گئی تو میرا آگے کیا بنے گا, آپ میری طرف سے میری والدہ کو سفارش کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, آپ نے اس عورت سے کہا कि तू अब इस दुनिया से जाने वाली है, इस बच्चे को माफ कर दे, मेरे लिए इस बच्चे को माफ कर दे। उसने कहा कि नहीं, इसने मुझे ऐसे गम दिए हैं, इसने मुझे ऐसे गम दिए हैं कि मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तूने इसको माफ नहीं करना, लाओ लकड़ी और लाओ आग, मैं आग जलाता हूँ और इस बच्चे को उस आग में ही डाल देता हूँ। अगर तू माफ नहीं करेगी तो उसने वैसे ही आगे आग में जाना है, मैं इसको यहीं पे आग में डालता हूँ। उस माँ ने कहा कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को आग में ना डालो, मैं तो इस चीज को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे को आग में डाला जाए। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने कहा कि मेरे बच्चे को आग में न डालो, मैं इसको माफ करती हूँ। ये बात उसने कही और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। तो देखिए, माँ वो जात है जो बच्चे को हर हाल में माफ कर देती है। कोई तकलीफ भी उसे पहुँचती है तो वो उसको जल्दी माफ कर देती है, कि उसके दिल में मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाल दी है। इसका कोई कीमत नहीं होती, इस मामता की कोई दुकान पे और बाजार पे मिलने वाली चीज नहीं होती। ये अल्लाह ने औरतों के दिलों में डाल दी होती है, ये मर्द के दिल में भी नहीं होती। उसी बाप का वो बेटा होता है, मगर उस बाप के दिल में ये मोहब्बत नहीं होती जो माँ के दिल में होती है। अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत माँ के दिल में डाल दी होती है। चुनाचे एक नौजवान का ये सच्चा वाकया है, उसकी शादी हो गई, गांव में रहता था, उसके वालदैन की वो अकेली औलाद था, एक ही बच्चा था, वालदैन बूढ़े थे। शादी हुई तो उसे बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, बीवी जो थी वो भी मोहब्बत करती, मगर बीवी काम चोर थी, उसके वालदैन की खिदमत नहीं करना चाहती थी। थोड़े दिनों उसने नाराजगी इख्तियार कर ली। खाविंद ने पूछा कि तुम मुझसे नाराज नाराज रहती हो? उसने कहा हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से किसी बड़े शहर ले जाओ। उसके दिल में ये था कि मुझे ये खिदमत नहीं करनी पड़ेगी। खाविंद ने बीवी की मोहब्बत में आकर एक बड़े शहर में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। वालदेन समझाते रहे कि हम बूढ़े हैं, हमारा कोई नहीं है, तू भी हमें छोड़ के चले जाएगा तो हमारा पीछे कौन होगा। उसने कहा कि मैं वहां से आपकी खिदमत कर लिया करूंगा। वालदैन समझाते रह गए, ये बीवी की मोहब्बत में आके इसने अपने वालदैन को छोड़ दिया और ये दूसरे शहर में चले गया। अब थोड़े दिनों तक तो वो वहां से कुछ पैसे भी भेजता, मगर बीवी ने वो भी रुकवा दिया। हत्ता के उसकी सऊदी अरब में जॉब लग गई, वहां पे चले गया। बीवी ने भी खुशी खुशी वहां पे चली गई कि अब तो बिल्कुल ही दूर हो जाऊंगी, तो खिदमत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वहां पे वो जाके वालदेन को बिल्कुल ही भूल गया, हत्ता के किसी भी वक्त वो याद भी नहीं करता, फोन भी नहीं करता, पैसे भी नहीं भिजवाता। उसके दिल में ये कलक थी, मगर अपनी बीवी की मोहब्बत की वजह से मजबूर था, राब्ता भी नहीं करता। हर साल उसके जहन में ये ख्याल आता कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, तकलीफ पहुंचा रहा हूँ उन बूढ़े वालदेन को जिन्होंने मुझे बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं ये काम कर सकूं, और अब जो है मैं उनसे राब्ता भी नहीं कर सकता। तो खूब इबादत करता, हर साल हज करता, मगर हर साल हज करता और हर साल हज के बाद उसको ख्वाब में आवाज आती कि तेरा ये हज कबूल नहीं हुआ। 12 साल तक इसी तरह करता रहा। 12 साल बाद उसको मताफ में एक बुजुर्ग मिले, बैतुल्ला शरीफ के हरम में उसे एक बुजुर्ग मिले। उन बुजुर्ग के पास जाके कहता है कि क्या सुनाऊं मैं आपको अपनी कहानी, कि 12 साल से हज कर रहा हूं और 12 साल लगातार इस तरह हुआ कि हज के बाद मुझे ख्वाब में आवाज आती है कि तेरा ये हज कबूल नहीं हुआ। तो उन बुजुर्गों के सामने रोने लगा, वो बुजुर्ग भी उसको देखते रहे, हत्ता कि उन्होंने कहा कि तू किसी के हक तो पामाल नहीं कर रहा। तो उसने फिर बात खोली कि हाँ, मेरे बूढ़े वालदैन हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको मैंने पूछा ही नहीं, कोई और उनका है भी नहीं। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि बस ये वजह है, तू छोड़ अब हज करना, तू जा उनकी खिदमत कर, यही तेरे मसाइल का हल है। चुनाचे उसने टिकट करवाई, 12 साल बाद मुल्क वापस आया। जब अपने गांव में पहुंचा तो गांव के लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, उसको शर्म भी आ रही थी। हत्ता के उसने किसी से पूछा अपने वालदैन के बारे में, एक आदमी था उसने बताया वो आदमी इसको तो पहचान ना सका, मगर इसने कहा कि हाँ दो बूढ़े हैं और उन बूढ़ों में से जो वालिद है, जो आदमी है, वो तो चंद साल पहले फौत हो गया। ये औरत है, कभी इसको कोई खाना दे देता है, कोई पूछ लेता है, इसको भी फालिज हो गया है, और चंद दिनों पहले उसकी आंखों की बीनाई भी खत्म हो गई है। सुना है कि उसका एक बेटा है जो 12 साल 13 साल पहले छोड़कर गया था, उस अल्लाह के बंदे ने कभी पूछा ही नहीं इनसे कि वो किस हाल में है। अल्लाह ताला ऐसे भी लोग पैदा करते हैं। इस आदमी को बड़ी शर्म आई कि ये वो मेरे बारे में ये बातें कर रहा है। उसने कहा कि कहाँ है उनका घर, चुनाचे वो घर बताया गया, तो वो उस घर में चले गया। घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो उसको नजर आया कि एक चारपाई पे एक बूढ़ी औरत पड़ी है जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी है, और उसको कुछ नजर भी नहीं आ रहा। उसके अंदर दाखिल होने से जो आवाज आई, तो इस आवाज पर उस औरत ने कहा कि कौन है? इसने भी बड़े डरते हुए कि पता नहीं ये मुझसे कितनी नाराज होगी, मुझे किस तरह ये धुतकारेगी, डरते हुए कह दिया कि मैं तेरा बेटा हूँ, आज 12 साल बाद तेरे सामने आया हूँ। इसने औरत ने आगे से कहा कि आजा बेटा, कितनी तूने देर कर दी, कितना तूने मुझे इंतजार करवाया, मैं तो तेरे इंतजार में बहुत ही ज्यादा परेशान में होती, तू आ गया है, मगर अब तो मैं तुझे देख भी नहीं सकती, मेरी आंखें भी नहीं है, मैं यही सोच रही थी कि अब मेरा वक्त करीब है और मेरा बेटा मेरे पास आया ही नहीं है, अब तू मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा, ताकि मौत से पहले एक मर्तबा तो मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं। देखिए ये वो माँ है कि इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद, इतने दुख सहने के बाद अगर बेटा वापस आता है तो उसको ये नहीं कहती है कि वापस चले जा, बल्कि ऐसे बेटे को भी दिल से लगा लेती है। ये माँ के दिल की ममता है जो अल्लाह ताला ने माँ के दिल में डाल दी है। अल्लाह ताला की भी बंदों से यही हाल है कि जब बंदा गुनाहों वाली जिंदगी गुजारता है, 100 साल गुनाह करता है, ऐसा बंदा जब अल्लाह के दर पे आता है तो अल्लाह ताला उसको ये नहीं कहते कि अब 100 साल गुनाह करके जब तेरे मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में आंत नहीं रही, इस हाल में अब तू मेरे पास तौबा कर रहा है, बल्कि ऐसे बंदे की भी तौबा अल्लाह ताला कबूल करते हैं और कुरान पाक में ऐसे बंदे के साथ मोहब्बत का ऐलान करते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्न अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो आज की इस मजलिस में हमें इस बात से फायदा उठाना चाहिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत बेबहा है बंदे के लिए, उस बंदे के लिए जो गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करता है, नेकी का इरादा करता है। देखिए अगर किसी माँ बाप का कोई बंदा, कोई बेटा, अगर कोई आदमी वरगला कर ले जाए और उसको दूर रखे माँ बाप से, और बहुत अरसे बाद वो बेटा वापस आ जाए, तो वालदा उसको धुतकारेगी नहीं, बल्कि कहेगी मैं तो तेरे लिए दुआएं कर रही थी, शुक्र है तू आ गया। इसी तरह अल्लाह के बंदों का भी यही हाल कि जब वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, शैतान उनको बरगला कर ले जाता है, जब वो वापस आता है तो अल्लाह ताला उसको अपने करीब कर लेते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश चल कर जाता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ दो बालिश आते हैं, और जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ चल कर जाता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ के आती है। तो हमें चाहिए आज की इस मजलिस में हम अपने पिछले तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें। अगर हमने अपने वालदैन के साथ कोई नाराजगी तंगी की है, उनको तकलीफ पहुंचाई है, तो उनसे माफी मांगे, उनके कदमों को बोसा देने को सआदत समझे, उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांगे, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के साथ मामला मोहब्बत वाला हो जाए। अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमाए। वआखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए सब मसरूरात आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं।